सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधे अनेकमहारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षितः विपदा सन्तुता शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् आपुनर्भवदर्शनं जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिः एधमानमदपुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् नमोऽकिञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। अब आज का श्लोक दोहराएंगे। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। इस श्लोक का श्लोक के तात्पर्य के ऊपर पिछले बुधवार को हमने चर्चा की थी। श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है, हे ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी और सभी स्वामियों के स्वामी, विद्वेषी कंस जिसने अपनी बहन देवकी को, जो आपकी माता है, बहुत लंबे समय तक अपने कारावास में बंदी बना के रखा था, और आपने अपनी माता को मुक्त कर दिया, उसी तरह से मुझे और मेरे पुत्रों को भी मुहुर विपद, एक के बाद एक आने वाली विपदाओं से आपने मुक्त कर दिया है। अर्थात पहले अनेक श्लोकों में कुंती देवी ने मैं आपको प्रणाम करती हूँ प्रणाम करती हूँ, तो इस श्लोक में वो नमः आता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल एक ऐसा एक किया हुआ विधान है। इसी में भी वो नमन करने की भावना कि आपने इतना किया है मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो आज श्री प्रभुपाद के जो प्रवचन है उसके से उधर से हम आरंभ करेंगे। वंदेयं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारणं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णभृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पातरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कुछ गिने चुने भागवत के प्रसंगों पर श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य उपलब्ध हैं और उनके प्रवचन भी, ये उनमें से एक है। कपिल शिक्षा, अजामिल, ईशोपनिषद, भक्तिरसामृत सिंधु आदि अन्य भागवत या भागवत के ऊपर आधारित ग्रंथों के ऊपर भी श्री प्रभुपाद के ग्रंथ भी हैं और उनके लेक्चर्स उनके प्रवचन भी। और एक बार हम हमारी क्लास में चर्चा कर रहे थे तो पता चला कि प्रभुपाद ने तात्पर्य में एक पॉइंट लिया है और प्रवचन में कोई दूसरा ही विविध अलग अलग प्रकार के मुद्दे उपस्थित होते हैं। ये भागवत का दोष न होकर ये उसका आभूषण है। भगवान कृष्ण को किसी भी दृष्टिकोण से किसी भी एंगल से देखा जा सकता है और श्री प्रभुपाद जो भागवत के ऊपर चर्चा होती है, हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जिसको क्लास कहते हैं भागवत क्लास, तो ये कोई केवल एक टीचर बता रहा है और स्टूडेंट सीख रहे हैं केवल ऐसी बात नहीं होती। हाँ, अगर कोई गुरु है, गुरु अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं, तो वो केवल अनुग्रह, जैसे श्रील प्रभुपाद प्रवचन देते हैं, तो वो केवल अपने शिष्यों के ऊपर अनुग्रह की बात है। लेकिन जब तक मैं अपने स्तर से इसका अगर एनालिसिस करता हूँ, विश्लेषण करता हूँ, तो वासुदेव कथा पुण्य यह पुनाति पुमान त्रिन, तीन प्रकार के व्यक्तियों को भागवत कथा से लाभ होता है। जैसे गंगा जी, ऊपर के लोग, मध्य लोग और निम्न लोग, सब जगह बहती है। जहां वो जाएगी वहां पे प्रदेश को पवित्र करती है। गंगा को हम भागीरथी गंगा कहते हैं, स्वर्गलोक में उसको मंदाकिनी कहते हैं, पातालोक में उसको भोगावती कहते हैं। नाम भले अलग अलग हो, काम एक ही है, सब कुछ शुद्ध करना। वैसे ही कृष्ण कथा जहां पर भी की जाए वहां पर तीन प्रकार के लोगों को वो पुण्यवान करती है, पावन करती है, शुद्ध करती है। श्रोत्रुम पृच्छकम वक्त्राम, श्रोत्रुवृंद जो सुन रहे हैं केवल, वक्त्रा जो बोल रहा है वो, और जो कोई प्रश्न पूछता है वो, तो इस्कॉन में प्रश्न पूछने के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। और ये कोई केवल ऐसे नहीं कि चलो आपका भी सुन लिया थोड़ा, आपने इतना मेरा सुन लिया, इस भावना से ना होकर जो कुछ चर्चा की गई है इसके बारे में आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई है क्या? क्योंकि जिज्ञासा, भले क्यूरियोसिटी क्यों ना हो, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्रील प्रभुपाद जी मॉडर्न एजुकेशन स्टाइल को स्लॉटर हाउस, कत्ल खाना कहते थे, कसाई खाना। क्यों? क्योंकि जहां पर जिज्ञासा रूपी पशु का बलि दिया जाता है। आज अगर किसी भी स्कूल, एजुकेशन, ऑफिस, कहीं भी जहां पर ज्ञान की बातें चल रही हो, वहां पर कोई पूछेगा, अच्छा भगवान का अस्तित्व कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कोई कहेंगे ये मामूली टॉपिक है, नहीं इसका इससे क्या संबंध है। किसी आप विद्वान से पूछो क्या आप भगवान में विश्वास रखते हो, वो कहेंगे ये मेरा पर्सनल मामला है। अरे कहकर कैसे पर्सनल मामला? तो लोग भगवान के ऊपर विश्वास और उस विश्वास का सिविल लाइफ में उसका परिवर्तन, प्रतिबिंबित होना, इसका कोई कनेक्शन ही देखते नहीं है। अर्थात ये कलयुग है, कई लोग तो बहुत दृढ़ कनेक्शन दिखाते हैं, बड़े आडंबर से पूजा करते हैं, बड़े नाम वाम यश से सब करते हैं, और काम तो अंदर से खल कंस जैसा करते हैं। तो ये कलयुग का डेंजर है, दांभिकता तो कलयुग का एक फीचर है ही। जैसे दुर्योधन का एक एडवाइजर था कणिक, दुर्योधन ने कहा ये मंदिर में पूजा वूजा करना मुझे पसंद नहीं, मैं जा सकता, क्या राजा हूं तो जाना चाहिए क्या? तो कणिक ने कहा देखो प्रजा के लिए ये अच्छा दिखावा है कि राजा पूजा भी करता है, इसलिए ये कभी बंद मत करना। मुझे मालूम है आपको कोई उसमें रुचि नहीं है, मुझे भी नहीं है। तो ऐसे एडवाइजर है जो साफ साफ महाभारत में वो बताते हैं कि आपको अगर इच्छा नहीं है पूजा करने की, फिर भी लोकप्रियता के लिए करो, ताकि लोग समझेंगे कि ये हमारा राजा कितना धर्म भीरु है, कितना ये है। तो इसीलिए सच्चा क्या है और मिथ्या क्या है, सत्य क्या है मिथ्या क्या है, ये समझना बड़ा कठिन है। तो जिज्ञासा को भगवद गीता में प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रश्न पूछना, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। एक बार राधानाथ महाराज बता रहे थे प्रश्न कैसे होने चाहिए और उत्तर कैसे होने चाहिए। बोले द क्वेश्चन शुड बी वन यू वुड बी विलिंग टू डाई फॉर, कि ये प्रश्न अगर नहीं पूछूंगा तो मैं मर जाऊंगा, ये इतना अंदर मुझे ये दे रहा है। एंड देन द आंसर शुड बी समथिंग यू शुड लिव फॉर, जो आंसर मिलेगा वो ऐसा शुद्ध आंसर भागवत का जो होगा तो उसके ऊपर अपना जीवन आधारित होना चाहिए। नहीं तो अगर वही वही प्रश्न अगर 50-15 साल बार भी आप वही पूछ रहे हैं तो जीव शरीर नहीं आत्मा ये कैसे सिद्ध हो सकता है, तो फिर उसका कोई ये नहीं है। जैसे एक अच्छी संस्था है वो सामाजिक कार्य करती है तो उनको गारंटी नहीं है कि उनके जो वक्ता हैं वो सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो नए प्रोग्राम में पहले से ही 3-4 लोगों को बताया जाता है कि आप प्रश्न पूछेंगे कि कृष्ण द्वारका क्यों गए, आप प्रश्न पूछेंगे फिर अक्रूर जी वृंदावन क्यों गए, और फिर वो लेक्चर होता है प्रोग्राम होता है सब, फिर वो वक्ता पूछता है कोई प्रश्न है, फिर ये प्रभु जी पहले से ही जिनका नंबर एक था वो बोलेंगे एक प्रश्न है मेरे मन में कि कृष्ण द्वारका क्यों गए, बहुत अच्छा प्रश्न है, फिर वो उसका उत्तर देंगे। फिर 2-3 ऐसे हो गए तो लोगों को भी लगता है कि ये वक्ता कितना इंटेलिजेंट है, इसको तो सब मालूम है। तो ऐसी चर्चा में मैंने बताया हमारे क्लास में ऐसा नहीं होता, हमको क्या मालूम कोई क्या प्रश्न पूछेगा, हम क्लास के बाद पूछते हैं कोई प्रश्न है, तो उन्होंने पूछा हमारे रिश्तेदार ने तो वास्तविक कोई कुछ भी प्रश्न पूछेगा तो, और उसका अगर उत्तर आपको नहीं आया तो ऐसे होता है कभी कभी। लेकिन जैसे महाजने ने गतासुपन था जयद्वीप महाराज को एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था तो उन्होंने कहा कुछ देख के सोच कर सॉरी अनएंसर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने कहा इनके चेहरे पे थोड़ी भी झुरिया नहीं हुई, कुछ चेंज नहीं हो गया उनके उसमें कि ठीक है आपने प्रश्न पूछा और मुझे नहीं आ मालूम उसका उत्तर दो कि क्या मेरा दोष थोड़ी है ये, चलो मिलकर हम भागवत का अध्ययन करेंगे और किसी अथॉरिटी से पूछेंगे मिल जाएगा उत्तर। तो ये श्रील प्रभुपाद ने जो इतना कुछ दिया हुआ है इसकी ये अथॉरिटी है। मैंने ऐसे भी कहीं से सुना है कि देखो मैं तो मामूली डिवोटी बनने की कोशिश कर रहा हूं, साधक हूं, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, आप प्रश्न पूछिए मुझे, मैं अच्छे लोगों से पूछकर उसका उत्तर आपको दे दूंगा, उसमें भी क्या कठिनाई है। हम थोड़ी यहां पर बैठे हैं तो सारा वो राज दंड लेके बैठे हैं कि अरे बापरी। एक बार मैंने देखा था एक डिवोटी ने क्लासेस देने से पहले एक व्यक्ति है जो बहुत जटिल कुटिल प्रश्न पूछते हैं तो उन्होंने पहले से कहा सिंपल प्रश्न पूछना प्लीज। तो नहीं वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें। श्रील प्रभुपाद जी का जो उनकी जो दिनचर्या हम देखेंगे तो सुबह 4:15 बजे तक अच्छा खासा 1.5-2 घंटे का ट्रांसलेशन करने के बाद उनका काम हो गया था, वो मंगल आरती, जैसे ही मंगल आरती समाप्त अपने वॉकिंग शूज डाल दिए प्रभुपाद प्रभात भ्रमण के लिए गए मॉर्निंग वॉक, ऐसा बराबर टाइम किया हुआ 7:15 को दर्शन के पहले प्रभुपाद वहां पे उपस्थित, दर्शन लिया, गुरु पूजा के बाद सीधे प्रभुपाद बैठ गए और वो कौन सा मंदिर है वहां पर कौन सा प्रसंग चल रहा है कोई उनका ये नहीं, तो आज हम मजा मिल के ऊपर चर्चा करेंगे और एक के बाद ऐसे एक एक मुद्दे और प्रभुपाद जी के भी लेक्चर के बाद प्रभुपाद ने ज्यादा प्रश्न नहीं लिए, एक 25 से लेकर 40 मिनट तक के लेक्चर होते थे उनके अंदाज से। अर्थात इसका ये मतलब नहीं है कि आज कोई व्यक्ति बहुत अधिक लेक्चर देते हैं तो वो कोई एक विपरीत भावना है। श्री प्रभुपाद जी ने कहा मुझे इतना कुछ बोलने की इच्छा है लेकिन आप लोग के पास इतना सुनने का स्टैमिना नहीं है, तो ऐसी बात नहीं थी। हम भी देखते हैं कि कोई सन्यासी छोटे क्लास पसंद करते हैं, जयद्वीप महाराज खास करके 25 से 30 मिनट का क्लास पसंद करते हैं, उसके बाद चाहे 45 मिनट का प्रश्नोत्तर हो कि ना हो उनको उसमें ज्यादा रुचि है। गौर गोविंद महाराज इनका तिरुभा हो गया 1906 में, वो कहते थे कि भागवतम का जो इंजिन है वो रेवअप इंजिन को शुरू करने के लिए उनको 45 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो आएंगे किसी प्रसंगों को तो अपनी 6-7 इतनी बड़ी डायरी लेके आएंगे। तो इसके बारे में गौतमीय तंत्र में कहा हुआ है इसके बारे में विष्णु पुराण में क्या बताया गया, इसके बारे में पद्म पुराण में क्या बताया गया। तो वो एक बार एक वेस्टर्न कंट्री में जब थे, उन्होंने कहा ये 45 मिनट का क्लास है, ये मेरा गला घोटता है, मुझे इतना कुछ बोलना है इसके बारे में। तो ये भी एक भागवत के प्रवचनों का एक कैटेगरी है कि वो इतना स्वाद लेते हैं उससे, उनको इतना रिलीश मिलता है कि बाद में जो ऑडियंस है वो उनको भी लगता है कि अरे उसको इतना मजा आ रहा है उसमें, तो सही पे कुछ होगा उसमें। तो खैर ये थोड़ी टिप्पणी थी जो प्रभुपाद जी के प्रवचन अब हम आरंभ करेंगे उसको पढ़ना। इस कुंती शिक्षाएं टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती में ज्यादा करके पहला जो सेक्शन है उसमें प्रभुपाद का वही परपोर्ट पूरा दिया हुआ है वैसे के वैसा, और उसके आगे प्रवचन आरंभ होता है। शुरू में इसके आरंभ में श्री प्रभुपाद देवकी की अनन्य स्थिति के ऊपर कुछ प्रकाश डालते हैं। भक्त देवकी जो बाद में कृष्ण की माता बनी कोई सामान्य महिला नहीं थी, आखिर भगवान की माता कौन बन सकती है। कृष्ण सबसे बड़े भक्त का ही पुत्र बनना स्वीकार करते हैं। अपने पूर्व जन्मों में देवकी तथा उनके पति ने कठोर तपस्या की थी, अतएव जब कृष्ण वर देने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने ईश्वर जैसे पुत्र की इच्छा जताई। ये एक कॉमन चीज दिखाई देती है कि भक्त तपस्या करते हैं, भगवान तपस्या के ऊपर प्रसन्न होकर वरदान की अभिलाषा करते हैं कि आप कुछ वरदान मांगिए। तो ये दंपत्ति, इस दंपत्ति ने ये मांगा था हमको आपके जैसा पुत्र चाहिए, और फिर भगवान को स्पष्टीकरण देना पड़ता है मेरे जैसा कोई नहीं है। तो फिर अब तो समस्या हो गई, तो भगवान कहते कि ठीक है मैं ही पुत्र बन के आता हूं, और यहां पर ऐसे ही हुआ है। ईश्वर के तुल्य दूसरा कोई व्यक्ति कहां हो सकता है, यह संभव नहीं। ईश्वर असमोर्ध्व है, अर्थात न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर, किसी प्रकार की प्रतियोगिता संभव नहीं। प्रभुपाद कहते हैं नो कॉम्पिटिशन, कोई यहां नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर हूं, तुम ईश्वर हो, हम सब ईश्वर हैं। जो ऐसा कहता है वो ईश्वर नहीं कुत्ता है। प्रभुपाद जी का फेमस था, वन हू सेज एवरीबॉडी इज गॉड ही इज अ डॉग, नॉट जीओडी गॉड, बट उल्टा उसका विपरीत डीओजी डॉग। अंग्रेजी में गॉड शब्द का उलटने पर डॉग बनता है जिसका अर्थ कुत्ता होता है, क्योंकि ईश्वर महान है और उसकी कोई प्रतियोगी, उसका कोई प्रतियोगी नहीं है। एक कल्चरल डिफरेंस था, जब वेस्टर्न लोगों को प्रभुपाद जी ने बताया कि ये कैसा गॉड है, ये तो कुत्ता है, तो देखा कि पब्लिक जो सामने बैठी थी ऑडियंस, उनके चेहरे पे कोई खास ऐसी नाराजगी नहीं पैदा हो गई। तो बाद में प्रभुपाद को पता चला कि डॉग उसको तो अमेरिकन लाइफ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली कहते हैं। सच बात है ये, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि माता और शायद दूसरे भाई, माता का जो बच्चा बेटा है उनका जमता नहीं, भाई और बहन का जमता नहीं, बेटा और बाप के बाद में कोई बीच में कोई संभाषण नहीं होता। अगर चार पांच लोगों का कैसा परिवार है तो कोई किसी के साथ बात नहीं कर सकता ठीक से, केवल हाय हेलो बस उतना ही। लेकिन जो फैमिली डॉग है वो सबके प्रेम का प्रेमास्पद है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ लव एडोरेशन ऑफ सब एवरीबडी। एक भक्त बता रहे थे कि मैं इतना दुखी था मेरे टीनेज लाइफ में, कॉलेज में प्रॉब्लम्स, यहाँ प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स, तो मैं केवल मेरे कुत्ते को ले जाता था लॉन्ग वॉक्स के लिए, दूर दूर कहीं चलकर फिर जगह बैठकर मैं उसको समझाता था कि देख मेरे जीवन में ऐसे हो रहा है, तो मैंने जो किया ठीक किया कि नहीं। और ये संभाषण का मुझे इतना लाभ होता था कि ये एकमात्र व्यक्ति है जो कभी पलट के कभी उत्तर देता नहीं था, वो कभी मुझे ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा था कि क्या वही वही रिकॉर्ड बजा रहे हैं बार 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 बार, हैं कुछ काम क्यों नहीं करते, नहीं। या किसी के साथ बोलो अच्छा मेरी बात सुनो अभी क्या हो रहा है मेरे जीवन में, आप सुनोगे क्या, नहीं भैया बोर हो गए इतनी बार सुन के, क्या वही वही करना। आदमी ऐसा रिस्पॉन्स दे सकता है, लेकिन कुत्ता है वो तो बेचारा, अर्थात वो कुत्ता क्या सोच रहा है वो वही जाने। लेकिन एक बड़ा स्टेडियम है अमेरिका में कहीं पर, उसका नाम दिया है फैमिली डॉग ऑडिटोरियम, फैमिली डॉग स्टेडियम।
मतलब फैमिली डॉग होना ये कोई बिल्कुल लांछन की बात नहीं है इसमें कुछ। विंटर में जब जाड़े के सीजन में बहुत हिम वर्षा होती है, बर्फ गिरता है, तो डॉग के लिए कोट होते हैं, ग्लोव्स होते हैं, डॉग सलून्स होते हैं, डॉग केयर सेंटर होते हैं कि फैमिली अभी कहीं पिकनिक के लिए जा रही है तो कुत्ते की देखभाल कौन करेगा, तो डे केयर सेंटर जैसे डॉग केयर सेंटर। और तो क्या, डॉग के लिए जिम्नेशियम होता है, अगर इसका वेट बढ़ रहा है बहुत, उनका खास जो चलने का जो ट्रैक होता है वॉकिंग वो भी होता है। तो कई डिवोटीज बोले प्रोपर कहते डॉग्स लाइफ, ये जीव भगवान को भूल गया, ही लिव्स अ डॉग्स लाइफ। इसमें बुरी बात क्या है? जब वो इंडिया में आए और कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, वृंदावन ऐसे शहरों के रास्ते पर जो कुत्तों की हालत देखी, तब उनको पता चला कि ये डॉग्स लाइफ क्या होता है। उसके पहले उनको कुछ मालूम नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद जी इंडियन स्टाइल में किसी को, अरे तू डॉग है, तू भारतीयों का तो खून खौल उठेगा ना कोई अगर डॉग कहेगा तो। लेकिन आप मानेंगे नहीं, वास्तविक अमेरिका में लकी डॉग, अरे उसका प्रमोशन हो गया लकी डॉग। ये तो एक क्या बोलते हैं उसको, ये तो एक एप्रिसिएशन की क्या फ्रेज है ये। तो ये कल्चर का डिफरेंस है। श्वान को वैदिक सभ्यता में आंगन पर ही रखा जाता था, उसको कभी घर नहीं आता था वो कहीं भी। भगवान कृष्ण का भी एक कुत्ता है, उनका पेट, उनके अनेक पेट्स हैं उन्होंने किए हुए, एक बंदर भी है कक्खटी करके कुत्ता है, उसका नाम भूल गया मैं, लेकिन किसी एक गोस्वामी के गोस्वामों के वांग्मय में भगवान कृष्ण के कुत्ते का नाम आता है। तो कुत्ता होना कोई बुरी बात नहीं है, एकमात्र उसका गुण जो बाकी सारे उसके अवगुणों को छोड़कर वैष्णव आचार्य भी उठाते हैं, अरे वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हारा कुकुर बलिया जाना है तुम्हारे, कि कुत्ता ईमानदार होता है, किसी व्यक्ति का एक बार खाया कभी भूलेगा नहीं। और इसलिए भक्तिराम ठाकुर अपने एक पद में कहते हैं कि मैं द्वार पर बैठा रहूंगा, आपके घर की रक्षा करूंगा, आप जो भी कुछ अन्न के टुकड़े फेंकेंगे उसको खाने पर संतुष्ट रहूंगा। और मैं केवल, आप वैष्णव हैं जो भी वो कहते हैं एक दूसरे किसी अन्य पद में, कि भगवान अगर मुझे पशु का भी जन्म मिलना है तो एक भक्त घर में दो। तो ये श्वान का एक गुण है जिसको वैष्णव तो सारग्राही होते हैं। तो इसलिए अनेक तत्पर में प्रभुपाद जी उस लाइन को ही लेते हैं हमारे हमेशा, अरे वैष्णव ठाकुर अमी तुम्हार कुकुर बलिया जाना है तुम्हारे। खैर यहां पर कुत्ते का जो दूसरा पहलू है उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। तो ये मैं ईश्वर, आप ईश्वर, हम सब ईश्वर, ये भावना को श्रील प्रभुपाद इतनी घृणा करते थे, ईश्वर का अंश होना अलग और ईश्वर होना अलग। कल ही एक लेक्चर सुन रहा था प्रभुपाद जी का, समुद्र के पानी की बूंद में नमक है, लेकिन क्या अगर 1000 लोगों के लिए खिचड़ी बनानी है तो क्या वो एक बूंद पानी डाल के खिचड़ी बन जाएगी? बोले हाँ इसमें नमक है। अरे नमक है लेकिन कितना है, कोई क्वांटिटी होनी चाहिए ना। तो वैसे ही शास्त्र में जीव को ब्रह्म कहा गया है और भगवान को भी कभी ब्रह्म कहा गया है। तो मायावादी निर्विशेषवादी वो तुरंत पकड़ लेते, देखो हमको ब्रह्म कहा गया ना, इसके बाद हम ब्रह्म है। अरे हाँ ब्रह्म है लेकिन क्वांटिटी क्या है? सूर्य का किरण, सूर्य किरण सब जगह फैले हुए हैं। अभी मैं देख रहा था उस विंडो से रूम नंबर 3 के, उधर क्लाउड्स हैं पूरे, बादल छाए हुए हैं पूर्व दिशा में, सूरज नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन सूरज की किरणें सब जगह पे हैं। अगर सूरज स्वयं यहां पर आए तो क्या हम देखने के लिए उपस्थित रह सकते हैं? नहीं। यही तो डिफरेंस है, यही तो फर्क है ब्रह्म और परब्रह्म में। मायावादी ये भी इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे सकते, अच्छा ठीक है जीव को ब्रह्म कहा गया, भगवान को ब्रह्म कहा गया, फिर ये परब्रह्म क्यों कहा गया? ऐसा तो नहीं ना कि सब परब्रह्म है, नहीं, ब्रह्म ब्रह्म, लेकिन ये परब्रह्म कहां से आ गया? नो आंसर। जैसे राष्ट्रपति भी अपने आप को देश का प्रथम नागरिक मानता है, इज द फर्स्ट सिटीजन, हम कहेंगे हम भी नागरिक हैं, हम वो भी नागरिक है, ठीक है, दोनों सामने सामने इक्वल है, नहीं, उसका घर देखो, उसकी पावर देखो। अगर उसने कहा कि मैं कहीं आ रहा हूं, किसी शहर में राष्ट्रपति ने कहा कि मैं 2 दिन के लिए आ रहा हूं, तो वहां पे सारे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रास्ता पूरा साफ किया जाता है। आपने कभी अनुभव किया कि आप रास्ते से जा रहे हैं और कोई आपके लिए पूरा रास्ता ये दे रहा है? तो नहीं। तो इसीलिए मायावादी को कृष्ण अपराधी बताया जाता है, कृष्ण के द्वेषी है वो। हम जो कृष्ण को इतना ऊंचा स्थान देते हैं, उसका द्वेष है उनके मन में। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वृंदावन से निकलकर वृंदावन जगन्नाथपुरी लौट रहे थे, रास्ते में एक राम भक्त मिला उनको, राम 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 राम, सतत राम राम, राम नाम के जप के अलावा और कुछ नहीं था। उन्होंने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को देखा, बोला आपका सामान मैं उठाऊंगा। बोले नहीं नहीं ऐसे, बोले नहीं मैं ही उठाऊंगा आपका सामान। रास्ते में कोई कष्ट नहीं होने दिया, उनका सामान अपने सर पे उठाया। और एक एक दिन जैसे जा रहा था, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इतने आनंदित हो रहे थे इस वैष्णव का संग पाकर, जगन्नाथपुरी लौटकर महाप्रभु के दर्शन लिए और वो बहुत आतुर से बताने के लिए कि कितने महान वैष्णव का संग मिला है मुझे आते समय। महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट से इतना इतना कुछ वार्तालाप किया, आपके माता पिता कैसे हैं, अभी वो चले गए, बहुत महान वैष्णव थे वो। आपको याद रहेगा कि महाप्रभु ने स्वयं तपन मिश्रा, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिता और माता को कहा था कि आप बांग्लादेश छोड़कर वाराणसी जाओ, वहां पर आपको आगे का कार्यक्रम क्या है बताया जाएगा। छोटे बालक थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, बाद में माता पिता की सेवा की, क्योंकि वैष्णव थे इसलिए माता पिता के तिरोहित होने के बाद वहीं पर रहे, और अब महाप्रभु के बुलावे पर वापस जगन्नाथपुरी आ रहे हैं। ये सारे संभाषण के बीच रघुनाथ भट्ट गोस्वामी सोच रहे हैं कि ये जो रामदास है, उसका नाम भी रामदास था, इस रामदास को पूरी उपेक्षा कर रहे हैं महाप्रभु, क्या कारण हो सकता है। रामदास वहां से फिर चले गए, महाप्रभु से पूछा फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने कि ये क्या क्या ऐसा दोष था इस वैष्णव में। तो उन्होंने कहा राम का नाम तो जप कर रहे थे लेकिन राम होने की अभिलाषा थी मन में। अब आप सोचिए, यह अभिलाषा महाप्रभु के अलावा और कौन सोच सकता है जो स्वयं परमात्मा के रूप में अंदर बैठे हैं। इसलिए कलयुग में ये निर्विशेषवाद और शून्यवाद, ये मान लीजिए जैसे पोल्यूशन की तरह है, सब जगह है ही वो, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम हरे कृष्ण वाले, हरे कृष्ण भक्त, हम स्मोकिंग नहीं करते, इंटॉक्सिकेशन वर्जित, लेकिन जो स्मोकर लोगों का जो लंग है, उनके जो फुफ्फुस लंग्स, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं स्मोक के, स्मोकिंग किए उसके रिजल्ट के, वो हमारे लंग्स में भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पासिव स्मोकिंग, ट्रेन में बैठे, बस में बैठे। तो वैसे ही हम निर्विशेषवादी या मायावादी नहीं होंगे, लेकिन ये पासिव मायावाद तो आ ही जाता है। कहीं भी देखो, इसलिए इससे बचकर रहना, यही कलयुग का एक मेन। और हम कहेंगे अरे ये भी तो ठीक है ना, सन्यासी है, और फिलोसफी वैसे तो बहुत सिंपल फिलोसफी है और बहुत साम्य है हमारी फिलोसफी में, खाली एक बात का प्रॉब्लम है। अरे एक बात क्या है, वो मेन बात है वो। तो श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सबसे बड़ा डेंजर निर्विशेषवाद और मायावाद का है कि कृष्ण के प्रति द्वेष का बीज उसमें आता है। कभी कभी भक्त सोचते हैं अरे हम कहां, हम तो एकदम तुच्छ जीव और भगवान से क्यों द्वेष करेंगे हम, लेकिन ये भक्त इतना अच्छा क्यों है। तो भगवान का द्वेष अर्थात भगवान से नहीं आरंभ होता, भगवान की विभूतियां हैं, उनके कोई भक्त हैं, भगवान के भक्तों का ऐश्वर्य है, भगवान के भक्तों का ज्ञान है, उससे आरंभ होता है वो और अंत में भगवान तक पहुंचता है। प्रभुपाद इसमें कोट करते हैं, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, कृष्ण एकमात्र स्वामी है, सभी उनके सेवक हैं। चैतन्य चरितमृत में बहुत सुंदर श्लोक बताया गया है वो, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एकमात्र ईश्वर कृष्ण है, बाकी सब उनके भृत्य सेवक है। और कितना सुंदर बंगाली है देखो, जे जाइचे नचाए से ताइचे करे नृत्य, इससे वो पिक्चर क्लियर होता है कि हाँ ईश्वर का मतलब क्या है, जो जैसे दूसरों को नचाता है, अर्थात नचाना ये जीव के लिए कोई एक बॉस है जिसका रेपुटेशन अच्छा नहीं है, बहुत नचाता है लोगों को अपने इर्द गिर्द बहुत नचाता है, तो ये कृष्ण का ही एक प्रतिबिंबित रूप है। भगवान कृष्ण कैसे नचाते हैं, लेकिन अपनी मुरली से। ब्रह्मा जी का जो लोक है सत्यलोक, वहां पर बेस्ट ऑफ द तपस्वी, एक के बाद एक ऐसे तपस्वी लोग हैं वहां पर जिनकी तपस्या कोई भंग नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी उनके लीडर हैं। शिव जी एक बार अपने तांडव नृत्य में मग्न हो गए तो कोई उनको उसमें से जगा भी नहीं सकता, ऐसे ही उनको एक वो समाधि लग जाती है। शास्त्रों में वर्णन है कि ये ब्रह्मा जी का तप, शिव जी का नृत्य और स्वयं महाविष्णु, भागवत के अंत में कथा आती है कि महाविष्णु भी भगवान कृष्ण को देखने के लिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं वहां पर हस्तांतरण करने के लिए ललायत है, शेक हैंड्स विद कृष्णा, महाविष्णु के मन में यह अभिलाषा होती है। लेकिन कृष्ण की मुरली सुनकर ब्रह्मा जी का तपोभंग हो सकता है, शिव जी का तांडव डिस्टर्ब हो सकता है कि ये मुझे विचलित करने वाली और बात कैसे उत्पन्न हो गई, तो ये भगवान का नचाना है, नॉट आउट ऑफ एम्बिशन, ये नहीं दिखाने के लिए देखो मैं कितना बड़ा हूं। जैसे कोई पिता है अपने एक वर्ष के पुत्र के साथ कुश्ती खेल रहे हैं, तो ये जो कुश्ती है इसमें जीतने से अच्छा हारने में मजा है कि नहीं, कोई पिता कहेगा देखो ये मेरा लड़का है अब मैं कैसे इसको हराता हूं, तो कहेंगे पागल है आप इससे हरो, जब वो आपको पराभूत करेगा, अगर बच्चे ने छोटे से अपनी छोटी सी मुष्टि से एक ओ करके और पिताजी हो हो करके गिर गए, इसमें ज्यादा आनंद है। यही एक ये प्रिंसिपल है ना, एक यही प्रिंसिपल तो सारे सृष्टि में चलता है कि भगवान के ऊपर कंट्रोल किस प्रकार से किया जाए। कर्मी जन कर्मकांड करके भगवान को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि इतना अच्छा खासा पुण्यवान मुहूर्त देखा है कि अभी भगवान क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये फल मुझे मिलना ही चाहिए। ये लोग नहीं जानते कि कर्म के फल देने वाले भगवान ही है। ज्ञानी कर्मकांड में इच्छा रखते नहीं, लेकिन इतने बड़े बड़े ग्रंथों को बायहार्ट कर लेते हैं, बोले कहीं तो भगवान पकड़ ही जाएंगे, कोई तो एक डेफिनेशन ऐसा होगा ही, कोई तो ऐसा एक श्लोक होगा ही, अगर नहीं तो मैं खुद लिखूंगा उसको, लेकिन भगवान को पकड़ लूंगा मैं, नहीं मिलते। तो कर्मी भोगी तो सबसे लोएस्ट है उनका, तो उनके तो उनका मेंशन भी नहीं करते ऐसे, इसमें भोगी कहते हैं कि भगवान ऐसे है तो हम भी भोग करके उनको उनके साथ कॉम्पिटिशन करेंगे। एक शंखाचूड़ नाम का जो था वो ये मेंटालिटी है, कुबेर का दास, कुबेर तो कोषाध्यक्ष हैं देवताओं के कोषाध्यक्ष नहीं बल्कि भौतिक जगत में हमारे पास आपके पास मेरे पास जो पैसा है वो उनका ही उधार समझा जाता है, ऐसे एक शास्त्र में वर्णन है। क्या आप कहेंगे मेरे पास अभी इतना बैंक बैलेंस है, समझ लेना कि ये कुबेर का उधार लिया हुआ है, कभी भी वापस ले सकते हैं वो। पॉलिटिक्स में जिसको किंग मेकर कहते हैं, कभी आपने सुना होगा, तो व्यक्ति वो खुद राजा नहीं बनता, यही बंबई में एक पॉलिटिकल पार्टी है जहां के वो नेता है वो ऐसे ही करते हैं, खुद कभी इंग्लिश में कहते हैं ही विल नेवर बी द ग्रूम ही विल ऑलवेज बी द बेस्ट मैन, खुद कभी शादी नहीं करेंगे लेकिन जो हस्बैंड के बाजू वाला व्यक्ति है वो बनेंगे वो, तो किंग मेकर ऐसे होते हैं। कुबेर का वर्णन भागवत में किया गया, राज राज कृत, राजा तो अनेक है, राजाओं को राजा बनाने वाले ये कुबेर है, किंग मेकर। तो ऐसे व्यक्ति का अगर कोई खास दास होगा तो वो थोड़ी भावना होती है ना। तो शंखाचूर्ण सेवक था, कैसे मालूम नहीं, बताया नहीं जाता है भागवत में, लेकिन वृंदावन आ गया और देखा तो सुंदर ऋतु है, कोकिल मंद स्वर में गान कर रही है, शीतल समीर बह रहा है, हवा अच्छी है और अति सुंदर, अति सुंदर ये भी शब्द इसमें तो कम पड़ते हैं, त्रिलोक्य सुंदरी से भी अधिक सुंदर ऐसी युवतियों के साथ कृष्ण और बलराम वहां पर गान हास्य विलाप, विलाप तो नहीं, हास्य विनोद चल रहा है। तो ये शंखाचूर्ण सोचता है, अरे ऐसे ग्वाल बाल लोगों को ऐसे अगर सुंदर स्त्रियों का सहवास मिलता है तो हम क्या बुरे हैं, हमारे पास तो इतनी ज्यादा अधिक संपत्ति है। यही एक भावना कि मेरे पास तो इनसे अधिक संपत्ति है। और वास्तविक वो जाकर कुछ गोपियों को अपनी लाठी से, भागवत में स्पष्ट लिखा है कि वो स्पर्श नहीं करता उनको, अपनी लाठी से या अपने शरीर से अपने साइज से डरा कर, ऐ चलो इधर चलो 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 करके वृंदावन के कोने में धकेलने की कोशिश करता है। और वो गोपियां बेचारी अलाप करती है कि भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। और जब भगवान कृष्ण अपनी तरफ दौड़ते हुए आते देखकर, तब शंखाचूर्ण समझता है कि अरे फाउल हो गया, फाउल कुछ तो गड़बड़ हो गया। अभी फाउल मतलब होता है फुटबॉल में पहला जो फाउल डिक्लेयर होता है उसके बाद पेनल्टी, फाउल का मतलब पेनल्टी। तो जैसे उसको समझता है मन में कुछ फाउल हो गया, गड़बड़ हो गया, तो भागता है वहां से, लेकिन भगवान उसे छोड़ते नहीं, उसको पकड़ते हैं, एक मणि होता है उसके सर पे, वो निकाल लेते हैं और एक ही मुक्के से मार देते हैं उसको। तो भोगियों की कॉम्पिटिशन ऐसी होती है कि हम भी भगवान के जैसा भोग करेंगे, कर्मियों की कॉम्पिटिशन कर्मकांड से, ज्ञानियों की कॉम्पिटिशन ज्ञान संपादन करके, सिद्ध योगियों के कंपटीशन कुछ शायद आपको मालूम होगा, प्रभुपाद के समय एक महेश योगी करके थे और वो वास्तविक अपने स्टूडेंट्स को फ्लाइंग सिखाते थे, योगिक फ्लाइंग कंपटीशन होती थी कैसे। तो मैंने पिक्चर देखा है, मालूम नहीं वो पिक्चर फोटोशॉप करके किया हुआ है कि एक्चुअल फोटो है। वो पांच छह लोग हैं, एक दो फुट ऊपर है जमीन के ऊपर, एक ढाई फुट है, एक तीन फुट है, अर्थात जो तीन फुट पर है वो उसके चेहरे पे हंसी है कि मैं जीत गया। देखो तो एक लेक्चर में प्रॉपर बताते हैं कि एक गाड़ी आ रही है आपके ऊपर रास्ते में, समझो एक टैक्सी वाला शराब पीकर एक ऐसे करके आपको आपको डर लगा कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, आपको ये बचाओ 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 कुछ करो कुछ करो, भाग रहे हैं आप। बोले ये मामूली चिड़िया है ना, वो देख रही है कि गाड़ी आ रही है, क्या करेगी वो। प्रॉपर कहते कि हट, ऊपर उड़ जाएगी पांच फुट, गाड़ी गई नीचे से। ये सिद्धि चिड़िया को है। जो सिद्ध बाबा या सिद्ध पुरुष अनेक वर्षों तक मेहनत कर रहा है कि भाई मैं भी उड़ सकता हूं, दूसरा कहेगा कितना उड़ेगा आप, कितना उड़ सकते हो जमीन के ऊपर, दो फुट कम से कम, ढाई फुट तो मेरा दस साल पहले ही हो रहा था। ये सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन कहीं नहीं जाता, स्पर्धा कभी नहीं जाती मन से, ये दूसरे से मैं अच्छा हूं दिखाने की भावना। केवल एक ही क्षेत्र ऐसा है जहां पर दूसरों से मैं अधिक नीच हूं यही बताने की स्पर्धा होती है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हारा करुणा सार। भक्तों ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव की साधक की दशा ऐसी हुई, योग्यता अगर आप सोचोगे, क्वालिफिकेशन मेरा पूछोगे, कुछ भी नहीं है। महाप्रभु ने एक बार कहा मैं आज ड्रामा करने वाला हूं, सबने कहा बहुत बढ़िया, ड्रामा देखने को मिलेगा। जो इंद्रिय निग्रह नहीं कर सकते वो ये ड्रामा नहीं देख सकते, उनको नहीं दिखाई देगा। तो आश्चर्य की बात है, अद्वैत आचार्य हरदास ठाकुर कह रहे हैं अरे फिर तो हम डिस्क्वालीफाई हो गए। सबसे पहला उनके मुख से वक्तव्य ये निकला कि महाप्रभु अगर आपका ड्रामा ऐसा है, नाट्य ऐसा है, जिनका इंद्रिय निग्रह हो गए वही देख सकते हैं, तो हम तो डिस्क्वालीफाई हो गए, हम तो नहीं देख सकेंगे। महाप्रभु का नहीं, आप तो ऐसे केवल बोल रहे हैं। बोला नहीं, हम स्वयं सोचते हैं कि हमारा इंद्रिय निग्रह नहीं है। फिर महाप्रभु का ठीक है, जिनका नहीं है वो भी सब देख सकते हैं। तो इसमें एक बात जो मुझे ये लगी कि सबसे पहले व्यक्ति अपना जो वैष्णव इच्छुक है, होने वाला वैष्णव होने के लिए इच्छुक है, सबसे पहले वो अपना डिस्क्वालिफिकेशन डिक्लेयर करता है। जैसे एयरपोर्ट पे अगर उन्हें एनीथिंग टू डिक्लेयर, एयरपोर्ट पूछते हैं कुछ डिक्लेयर करना है, तो वैसे ही वैष्णव गुण लाने के लिए अगर कोई पूछेगा एनीथिंग टू डिक्लेयर, डिस्क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस जीरो। और ये भावना, इससे एक्चुअली ये कोई नाटक नहीं है या कोई बनाव नहीं है, इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। वास्तविक ज्ञान का फॉर्मूला, ज्ञान प्राप्त करने का जो की जो विधि है, अमानित्वम अदम्बित्वम, अमान अपने लिए मान की भावना नहीं, और अदम्ब ह्यूमिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज, नम्रता ये ज्ञान का आधार है या उसका मूल है। तो 32 पेज तक हमने आज चर्चा की है, अगले बुधवार से नेक्स्ट पैराग्राफ से आरंभ करेंगे। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की। इसका कोई प्रश्न है या कोई कमेंट्स?
It is said like that holy name of the Lord is most powerful, can purify from all the anarthas. So I just wanted to ask, as you mentioned regarding Ramdas, you were chanting the holy name of the Lord Ram, even though he has a desire to become Lord himself, will not that holy name will purify him from that desire?
Very good question. If the holy name is supposed to be purifying, इनका प्रश्न ऐसा है कि रामदास विश्वास नाम जप कर रहे थे राम राम, तो क्या नाम जप में उतनी शक्ति नहीं है कि उनकी वो निर्विशेषवादी शून्यवादी भावना को शुद्ध कर सके? मैं एक लेक्चर सुन रहा हूं धनुधर महाराज का, आप लोग डॉक्टर हैं तो आपके लिए खास समझ में आएगा। वो जिलेटिन कैप्सूल्स जो हम रिकमेंड करते हैं किसी एक व्याधि के ऊपर, तो जिस कंपनी में कैप्सूल्स बनते हैं, एक अंदर की बात होती है, एक ऊपर का कैप होता है और उसके अंदर दवा होती है। तो वो एक उदाहरण देते हैं कि रोज हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम, बोले ये क्या है? ये कैप्सूल मैन्युफैक्चर करना है। डॉक्टर कहेगा ये लाल कैप्सूल दो लेने का, पीला वाला शाम को दो लेने का, ठीक हो जाओगे। जो पेशेंट है वो सोचता है ये कैप्सूल में कोई बहुत अगाध अबोध और कोई मिस्टिकल पावर है इसमें। उसका जो कैप्सूल की जान है उसके अंदर का इंग्रेडिएंट। तो हम जो होली नेम लेते हैं, हम जो हरिनाम लेते हैं, वो एक कैप्सूल है शरणागत होने की इच्छा, दीन भाव, सेवा की भावना, ये उसके अंदर का केमिकल इंग्रेडिएंट है। अगर हमने केवल कैप्सूल बनाए और वो खाते रहे तो सोचेंगे कि अरे व्याधि नहीं जा रही अभी तक। जैसे कोई डिवोटीज हैं जो जेलेटिन पसंद नहीं करते, उसमें मांस वास होता है या एनिमल प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो मैं देखा है वो कैप्सूल में से निकाल कर वो केमिकल बाहर निकल वो केवल खाते हैं, क्योंकि वो जो अंदर का जो केमिकल है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो हरिनाम शुद्ध है, हरिनाम में पावर है, लेकिन अगर हम प्रोएक्टिवली अलग प्रकार के, एक तो दो अवस्था हो सकती है कि शुरू से ही गलत धारणा से हम हरिनाम ले रहे हैं, या तो बाद में जो महाप्रभु ये नहीं बताते कि हरिनाम एक ऑटोमेटिक चीज है और आप जब करते रहो और बाद में सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं। ऑटोमेटिक भले एक मशीन है जो ऑटोमेटिक है, लेकिन कोई तो ऑपरेटर होना चाहिए ना बटन दबाने के लिए। तो वैसे ही हरिनाम की, हरिनाम में प्रगति ऑटोमेटिक है, लेकिन बाड़े लता पता क्या कहते हैं वो भक्ति लता बीज के ऊपर अगर बाकी वाइल्ड क्रीपर्स वो अगर ज्यादा बढ़ेगी तो वो उसके डेवलपमेंट को चोक कर सकती है। एक खाली एक दृष्टिकोण से जितना किया हुआ नाम है भगवान का नाम वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, ये बात तो सही है, लेकिन उसकी जो प्रगति है, उसका जो प्रोग्रेस है, वो साधक को उसका कोई उपयोग नहीं होता उसका, जब तक कि वो अपने मन से ये शून्यवाद और निर्विशेषवाद निकाल नहीं सके। ये निकालने का काम उसी का है, ही हैज टू टेक द इनिशिएटिव ऑफ टेकिंग इट आउट। जैव धर्म करके जो भक्तिवरण ठाकुर लिखे थे ग्रंथ है, एक उपन्यास की तरह है, वो नॉवेल की तरह है। तो उसमें एक वैष्णव, एक एक मायावादी सन्यासी, सन्यास ले चुके हैं वो, जब उनको पता चलता है कि ये ऐसी बात है, तब वो एक साधक के रूप में पेश आते हैं। बोले आज से मैं सन्यास उन्यास सब छोड़ दिया, सन्यास का ही सन्यास लिया उन्होंने, कि ये सन्यास की उपाधि थी और मैं अब तक भगवान बनने की कोशिश कर रहा था। तो इसलिए हरि नाम के प्रति अगर कभी कभी से दिखाया जाता है कि कोई अगर हरि नाम लेके उसमें कोई अगर अपराध है, कोई पाप है या कोई गलत ढंग से कर रहा है, तो कृष्ण स्वयं हरिनाम उसके ऊपर प्रसन्न कैसे होते हैं, किसी एक वैष्णव को भेजकर उसको वो पहले डिफेक्ट बता देंगे, ये तो गलत कर रहा है। अब उसके बाद उसको जगह, अरे 15 साल से जप कर रहा हूं आपको क्या मालूम। तो अगर वो अहम भाव आ गया, अगेन प्रोग्रेस इज स्टॉप्ड। तो इफ समबडी टेल्स यू एंड यू टेक इट एज ए लेसन, ओनली देन देयर इज होप फॉर फर्दर प्रोग्रेस। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज भागवत महापुराण की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की, ताई गौर प्रेमानंदे।